ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 23 अगस्त 2026 के लिए है। विषय मन, स्वर्णपथ, ग्रंथियों। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाई है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमको दी हैं। उत्तरदायी अध्ययन कुलसियों। सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा आहर न कर ले, जो मनुष्यों के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार हैं, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वर तत्व की सारी पूर्णता सदैव वास करती है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। पाठ उपदेश बाइबल में से फिलिपियों। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मेरे प्यारो, जिस प्रकार से तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर होने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्विच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। मत्ती। हेरोदिस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ। लुका। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। उसके माता पिता प्रतिवर्ष फिसा के पर्व में यरूशलेम को जाया करते थे। जब वो 12 वर्ष का हुआ तो वो पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए, और जब वो उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो वो लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया, और ये उसके माता पिता नहीं जानते थे। और 3 दिन के बाद उन्होंने मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए उसे पाया, और जितने उसकी सुन रहे थे वो सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। और यीशु बुद्धि और डेलडोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। मत्ती। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वो उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। मत्ती। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए, और उसने उसे अच्छा किया और वो गूंगा बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, ये क्या दाऊद की संतान का है? परंतु फरीसियों ने ये सुनकर कहा, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना शैतानों को नहीं निकालता। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वो उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना ना रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वो अपना विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा? भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। लुका। फिर एक दिन वो और उसके चेले नाव पर चढ़े, और उसने उनसे कहा कि आओ झील के पार चलें। फिर वो ग्रासिनियों के देश में पहुंचे, जो उस पार गलील के सामने है। जब वो किनारे पर उतरा उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं, और वो बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था और ना घर में रहता था, वरुण कब्रों में रहा करता था। वो यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि वो उस मनुष्य में से अशुद्ध आत्मा को निकल जाने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वो उस पर बार बार प्रबल होती थी, और यद्यपि लोग उसे संगलों और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वो बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत सी आत्माएं उसमें प्रवेश कर गई थीं, और उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। वहां पहाड़ों पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था, सो उन्होंने उससे विनती की कि हमें उनमें प्रवेश करने दे, सो उसने उन्हें जाने दिया। तब दुष्ट आत्माएं मनुष्य में से निकलकर सूअरों में गईं, और वो झुंड कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जाकर डूब गया, और चरवाहे ये जो हुआ था देखकर भागे, और लोग ये जो हुआ था उसके देखने को निकले, और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्माएं निकली थीं उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने और साचित बैठे हुए पाकर डर गए। रोमियो, सो अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरुण आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापा में शरीर की समानता में और पाप का बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरुण आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों में मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों में मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। परंतु यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया तो वो तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लयपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारस भी, वरुण परमेश्वर के वारस और मसीह के संगी वारस। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वास्थ्य शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वास्थ्य। मन केवल मैं या हम, एकमात्र आत्मा, जीवन, दिव्य सिद्धांत, पदार्थ, जीवन, सत्य, प्रेम, एक ईश्वर, वो नहीं जो मनुष्य में है, लेकिन दिव्य सिद्धांत या ईश्वर जिसका मनुष्य पूर्ण और परिपूर्ण अभिव्यक्ति है। अनंत मन ही बनाने वाला है और रचना इसमें से निकलने वाली अनंत छवि या विचार है। अगर मन सभी चीजों के अंदर और बाहर है तो सब कुछ मन ही है, और ये परिभाषा वैज्ञानिक है। मनुष्य के पूर्ण, यहां तक के पिता के रूप में भी पूर्ण होने का विज्ञान बताता है, क्योंकि आध्यात्मिक मनुष्य का आत्मा या मन ईश्वर है जो सभी का दिव्य सिद्धांत है, और क्योंकि ये वास्तविक व्यक्ति आत्मा की बजाय शरीर के नियम द्वारा शासित है, ना कि पदार्थ के तथाकथित नियमों द्वारा। आत्मा का ब्रह्मांड ईश्वरीय सिद्धांत या जीवन की रचनात्मक शक्ति को दिशाता है, जो मन के बहुसंख्यायिक रूपों को पुन उत्पन्न करता है, और यौगिक विचार मनुष्य के गुणों को नियंत्रित करता है। पेड़ और जड़ी बूटी अपनी स्वयं की किसी प्रसार शक्ति के कारण फल नहीं देते हैं, बल्कि इसलिए कि वो उस मन को प्रतिबिंबित करते हैं जिसमें सभी शामिल हैं। एक भावतिक दुनिया का अर्थ है एक नश्वर मन और मनुष्य एक निर्माता, वैज्ञानिक ईश्वरीय रचना, अमर मन और ईश्वर द्वारा निर्मित ब्रह्मांड की घोषणा करती है। अनंत मन मनासिक अणु से अनंत तक सभी को बनाता और नियंत्रित करता है। सभी का ये दिव्य सिद्धांत उनकी रचना के दौरान विज्ञान और कला और मनुष्य और ब्रह्मांड की अमरता को व्यक्त करता है। सृजन हमेशा दिखाई दे रहा है और हमेशा अपने अटूट स्रोत की प्रकृति से प्रकट होता रहना चाहिए। नश्वर भाव इस प्रकार प्रकट होता है और विचार सामग्री कहलाता है। इस प्रकार गलत अर्थ में दिव्य विचार मानव या भावतिक विश्वास के स्तर तक गिर जाता है, जिसे नश्वर मनुष्य कहा जाता है। लेकिन बीज अपने आप में है, केवल दिव्य मन ही सब कुछ है और सभी को पुनः उत्पन्न करता है। जैसा कि मन गुणक है और मन का अनंत विचार मनुष्य और ब्रह्मांड उत्पाद है। एक विचार, एक बीज या एक फूल की एकमात्र बुद्धि या पदार्थ ईश्वर है जो इसका निर्माता है। मन ही सबकी आत्मा है। मन जीवन सत्य और प्रेम है जो सभी को नियंत्रित करता है। झूठी और आत्मविश्वास पूर्ण सिद्धांताओं ने पापियों को ये सोच दी है कि वो ऐसा कुछ बना सकते हैं जो ईश्वर नहीं बना सकता, अर्थात ईश्वर की छवि में पापी इंसान। इस तरह ईश्वर के मन की छवि या झलक के स्वरूप के बिना उसके नाम पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन साइंस में ये कभी नहीं कहा जा सकता कि इंसान का अपना कोई मन है जो ईश्वर अर्थात पूरे मन से अलग हो। ये समझ के अहंकार मन है और ये कि एक मन या बुद्धि है, एक बार में नश्वर अर्थ की त्रुटियों को नष्ट करने और अमर भावना की सच्चाई की आपूर्ति करने के लिए शुरू होता है। ये समझ शरीर को सामान जैसे पूर्ण बनाती है। ये तंत्रिकाइयों, हड्डियों, मस्तिष्क इत्यादि को मालिक की बजाय नौकर बनाता है। यदि मनुष्य दिव्य मन के नियम से संचालित होता है तो उसका शरीर हमेशा के जीवन और सत्य और प्रेम को प्रस्तुत करने में है। वास्तविक मनुष्य का प्रतीक कार्य ईश्वराय मन द्वारा संचालित होता है। मानव को मन मारने या ठीक करने की कोई शक्ति नहीं है और इसका भगवान के आदमी पर कोई नियंत्रण नहीं है। वो दिव्य मन जिसने मनुष्य को बनाया, वो अपनी छवि और समानता को बनाए रखता है। मानव मन भगवान के विपरीत है और इसे बंद करना चाहिए, जैसा कि सेंट पॉल ने घोषित किया है। वो सब जो वास्तव में मौजूद है वो दिव्य मन और उसका विचार है, और इस मन में संपूर्ण प्राणी समान जैसे पूर्ण और शाश्वत पाया जाता है। सीधे और संकीर्ण तरीके से इस तथ्य को देखना और स्वीकार करना है। इस शक्ति से उपाजें और सच्चाई के अग्रणी का पालन करें। बुराई के विचार और आदेश किसी भी हद तक नहीं पहुंचते हैं और किसी के विश्वास प्रामित से अधिक नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बुराई के विचार और वासना और दुर्भावनापूर्ण आदेश आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे पराग को भटकाना, असुरक्षित स्थान के लिए एक मानव मन से दूसरे में जाना, अगर साधगण और सत्य एक मजबूत रक्षा का निर्माण करते हैं। जब मनुष्य ईश्वर द्वारा शासित होता है, सभी चीजों को समझने वाला वर्तमान मन मनुष्य जानता है कि ईश्वर के साथ सभी चीजें संभव हैं। इस जीवित सत्य को समझने का एकमात्र मार्ग जो बीमार को उपचार देता है, ईश्वरीय मन के विज्ञान में पाया जाता है, जैसा कि यीशु मसीह ने सिखाया और प्रदर्शित किया है। मन भावे रचनाकार है और इसके अलावा कोई शक्ति नहीं हो सकती जो कि मन से ली गई है। यदि मन पहले कालानुक्रमिक था, पहले संभावित रूप से है और पहले अनंत काल तक होना चाहिए, तो मन को उसके पवित्र नाम के कारण गौरव, सम्मान, प्रभुत्व और हमेशा की शक्ति प्रदान करें। चिकित्सा के हीन और अस्वाभाविक तरीके मन और दवाइयों को ठोस बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन दोनों वैज्ञानिक रूप से घुलमिल नहीं पाएंगे। हम उनसे ऐसा करने की इच्छा क्यों करें जबकि इससे कुछ अच्छा नहीं हो सकता। यदि मन सबसे महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ है तो हमें मन पर भरोसा करने की आवश्यकता है, जिसे निम्न शक्तियों के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, भले ही ये तथाकथित शक्तियां असली हों। इंसान अपने निर्माता की सरकार के अधीन रहकर कोई दूसरा मन न रखकर अंजीलीवादी की इस बात पर आधारित होकर कि सब कुछ उसी परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वास्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई, पाप बीमारी और मन पर जीत हासिल कर सकता है। जैसे ही नश्वर इस भ्रम को छोड़ देते हैं कि एक से अधिक मन है, एक से अधिक ईश्वर है, ईश्वर की समानता में मनुष्य प्रकट होगा और ये शाश्वत मनुष्य उस समानता में कोई भावतिक तत्व शामिल नहीं करेगा। एक सामग्री के रूप में एक सिद्धांतिक जीवन आधार को अस्तित्व की गलत धारणा के रूप में पाया जाता है। मनुष्य का आध्यात्मिक और दिव्य सिद्धांत मानव विचार पर आधारित होता है और ये वहाँ था जहाँ युवा बच्चा था और हमें उसी की ओर ले जाता है, यहाँ तक कि एक नए जन्म के लिए भी पुराना विचार जीवन के आध्यात्मिक बोध और जिसमें जीवन शामिल है। एक ईश्वर एक मन उस शक्ति को प्रकट करता है जो बीमारों को ठीक करती है और पवित्र शास्त्र की इन बातों को पूरा करती है, मैं तुम्हारा ठीक करने वाला यहोवा हूँ तथा मुझे छुड़ौती मिली है। जब दिव्य उपदेशों को समझा जाता है तो वो फेलोशिप की नींव को उजागर करते हैं, जिसमें एक मन दूसरे के साथ युद्ध में नहीं है लेकिन सभी के पास एक आत्मा भगवान एक बुद्धिमान स्रोत है जो के अंजीली कमांड के अनुसार है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मनुष्य और उसके निर्माता का संबंध ईश्वरीय विज्ञान में है और वास्तविक चेतना केवल ईश्वर की बातों के प्रति ही संज्ञान है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है, प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, पारोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, फरमाश देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सजाओं से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।